शांति। श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ में स्वयं परमात्मा के महावाक्यों का संग्रह भगवानुवाच के रूप में है। गीता के भगवान ही नई दैवी सृष्टि की पुनस्थापना और पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश अति धर्मग्लानि के समय करवाते हैं, और वर्तमान समय में धर्मग्लानि के सभी चिन्ह परिलक्षित हो रहे हैं। तो क्या गीता के सिद्धांतों की पुनरावृत्ति का समय आ गया है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ भ्राता ब्रजमोहन भाई जी। भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति।
आज की वर्तमान परिस्थिति अगर हम देखें तो जो कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसे अगर देखा जाए तो संपूर्ण मानव जाति ने परमाणु हथियार के रूप में विनाश की तरफ बढ़ने वाले जो कदम है वो एक तरफ बढ़ाए हैं, और दूसरी तरफ प्रकृति का इतना दोहन किया है, इतना शोषण किया है कि भयावह प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं। तो क्या ये समय आ चुका है जब गीता के वृत्तांत की पुनरावृत्ति होने वाली है?
ये विचारणीय प्रश्न है कि जो कुछ गीता के भगवान ने कहा था कि जब अति धर्म ग्लानी हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, मानवता दुखी हो जाती है, अशांत हो जाती है और पुकार करती है कि हे परमात्मा हमें इस दुखों से छुड़ाओ, उस समय परमात्मा अवतरित होकर गीता के भगवान गीता का ज्ञान सुनाते हैं और नई सृष्टि की पुनः स्थापना करवाते हैं, जिसके साथ ही पुरानी सृष्टि का विनाश संबंधित है। जब नई सृष्टि की स्थापना का कार्य पूरा होता है उसके तुरंत बाद ही पुरानी सृष्टि की सफाई विनाश के द्वारा होती है। तो देखा जाए तो जैसा कि आपने प्रश्न में कहा कि मानवता बड़े बड़े बुद्धिमान मानवों की, देशों के अध्यक्षों की जो पावर्स में है, वह सारी मानव जाति के विनाशकारी परमाणु शस्त्रों के भंडार इकट्ठे किए हुए हैं, और कहा जाता है कि इतने भंडार हैं कि सारे विश्व दुनिया की कई बार कई गुना बार इसकी तबाही हो सकती है। और एक ओर ये तैयारी की हुई है और दूसरी ओर लोभ के वश मानव ने प्रकृति का, जो कि प्रकृति को कहा जाता है मदर अर्थ, मदर नेचर, जो हमको बिना मांगे ही सब कुछ प्रोवाइड करती है, उसका भी इतना दोहन कर लिया है, इतना अब्यूज कर लिया है, मिसयूज की बात तो बाद की है, कि प्रकृति भी अब दुखी होकर के सामना कर रही है जैसे। और हम देख रहे हैं कि पहले वक्त में भी थोड़ी बहुत प्राकृतिक आपदाएं आती थी, लेकिन इस प्रकार की नहीं जो कि एकदम विनाशकारी हो और बहुत मास स्केल पर और अचानक प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो गई हैं। और कहा जाता है, वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि इतना क्लाइमेट चेंज हो गया है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं, भयानक दुखदायी प्राकृतिक आपदाओं के पहाड़ टूट सकते हैं। तो ये तो इसी बात का संकेत है नेचुरली कि ये वही समय है जब विश्व का परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो चरित्र है, मानव का चरित्र, कहा जाता है कि अगर समाज की दशा को देखना हो तो मानव का चरित्र देखो। इस समय चरित्र अपनी न्यूनतम सीमा पर है। चरित्र नाम की क्या वस्तु है ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो हम देखते हैं कि आज नारियों के ऊपर कितना दुखदायी उनकी दशा है कि नारी घर से नहीं निकल सकती। मन की अशांति तो सभी को है, किसी को किसी बात की चिंता है, किसी को किसी बात की, यहां तक कि छोटे बच्चे भी, जो पढ़ाई आजकल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे उसके बोझ से तनाव में आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति को यही कहा जाएगा कि अब ये दुनिया परिवर्तित होनी चाहिए। सबके मन में ये आ भी रहा है, कि कुछ अब चेंज होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए, तो ये बात तो इस बात का संकेत है।
लेकिन भाई जी, गीता के भगवान का अवतरण तो द्वापर युग के अंत में बताया गया है।
हाँ, ऐसा है कि दो चीजें अलग अलग हैं। एक है गीता के भगवान यानी परमात्मा का स्वयं अवतरण सृष्टि के परिवर्तन के लिए, और क्योंकि उन्होंने गीता सुनाई तो गीता ज्ञान एक माध्यम बना मनुष्य आत्माओं को नई सृष्टि के लिए तैयार करने के लिए। विनाश के लिए तो परमात्मा को कुछ करना नहीं पड़ता, मनुष्यों ने स्वयं ही अपने विनाश के लिए सब साधन तैयार किए हैं। लेकिन नई सृष्टि जब ये परिवर्तित होती है तो नई में भी तो फिर दैवी आत्माएं चाहिए ना। जैसे गीता में ही वर्णन है कि एक आसुरी संपदा एक दैवी संपदा है, तो आसुरी संपदा का विनाश होता है वो स्वयं ही अपना विनाश कर लेते हैं। कहा जाता है ईविल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, अपने पाप के बोझ से पाप का घड़ा फूट जाता है। लेकिन जो नई सृष्टि है उसके लिए उसी आसुरी संपदा के संस्कारों वाली आत्मा को परमात्मा ज्ञान देकर उनको राजयोग सिखाकर अपने साथ युक्त करके उनको पति से पावन बनाते हैं। और वही पावन आत्माएं आगे अगली दुनिया में देवी देवता के रूप में जन्म लेती हैं, तो वो कार्य परमात्मा स्वयं आके करते हैं। अब एक तो ये था कि परमात्मा ने किया, और ये भी कह दिया कि जो कुछ मैं नई दुनिया स्थापित करके जा रहा हूं ये मत समझना कि सदा के लिए स्थापित हो गई, क्योंकि हर चीज नई से पुरानी स्नेह नेचुरली हो ही जाती है। और कहा ही जाता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो जब पुरानी हो जाएगी फिर इसी प्रकार से तो फिर मैं पुणे आऊंगा। तो ये परमात्मा का वायदा है मनुष्य आत्माओं के साथ कि यदा यदा कि जब जब पुरानी होगी मैं आके इसको नई करूंगा, क्योंकि नई से पुरानी का इतिहास हम जानते हैं, पुरानी से नई तो परमात्मा ही करते हैं, नए विश्व के रचयिता हैं। ये तो हुआ वृतांत। परंतु इसका जो उल्लेख शास्त्र के रूप में किया गया है श्रीमद् भगवद गीता, यद्यपि वो अन्य सभी शास्त्रों में श्रोमणी और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसी एक ग्रंथ में स्वयं परमात्मा के महावाक्यों का उल्लेख है। और बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो मनुष्य आत्माओं के विद्वानों के ऋषियों के रचे हुए हैं, उस भेंट में तो ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ग्रंथ बहुत समय के बाद लिखा जाता है कालांतर से, क्योंकि जब परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो देवी देवताओं की डायनेस्टी शुरू हो जाती है, श्री राधे श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनकी राजगद्दियां। लोग तो नहीं समझते कि जब परमात्मा नई दुनिया स्थापित करते तो दैवी संपदा की भी तो राजगद्दियां चलती है ना, पूरा सतयुग तक वो सूर्यवंशी राजगद्दी चलती है, फिर उसके बाद पूरा त्रेता युग है जिसमें श्री राम श्री सीता की वंशावली की राजगद्दियां चलती हैं। उस समय तो किसी शास्त्र का किसी ज्ञान का आवश्यकता ही नहीं, वो प्रारब्ध होता है। इतने काल के बाद यानी 2 युगों के पश्चात जब फिर दुख शुरू होता है उस समय ये ग्रंथ लिखा जाता है, और सभी जानते हैं इसे वेद व्यास जी ने लिखा है। तो उस समय ये लिखा गया, तो क्योंकि वो समय द्वापर का था तो द्वापर के अंत को गिन लिया गया कि बहुत भयानक समय होगा जिसमें धर्म ग्लानी हो जाएगी। तो परमात्मा गीता के भगवान के अवतरण का समय उस युग के अंत को लिख दिया गया। परंतु परमात्मा जब स्वयं अवतरित होते हैं वो सत्य ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैंने अवतरित होकर नई दुनिया स्थापित की थी, मेरे अवतरण का जो रिकॉर्ड है जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारी बातें समय अनुसार नहीं है, आगे पीछे की हुई हैं, उसको पढ़ने से नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती, कोई दैवी संपदा का मेंबर भी नहीं बन सकता, आश्रय संस्कारों को छोड़ भी नहीं सकता। हम देखते हैं कि भगवद गीता सदियों से चली आ रही है, लोग उसका पठन पाठन बड़े सम्मान से करते हैं, इसको सर्वश्रेष्ठ भी मानते हैं, लेकिन साथ साथ अन्य ग्रंथ भी पढ़ते रहते हैं। और इतना पढ़ने के बाद भी वो कहा जाता है कि वो संस्कार तो जाते ही नहीं, ऐसे तो कहते हैं रावण भी सभी वेद शास्त्र पढ़ा हुआ था, रहा तो रावण का रावण। तो ये कार्य परमात्मा स्वयं करते हैं, उस समय बताते हैं कि देखो मेरा अवतरण नई दुनिया के लिए होता है। और चार युगों को यदि आप देखेंगे तो परमात्मा सतयुगी दैवी सृष्टि पावन सृष्टि की स्थापना करते हैं, उसी को नई कहा जाता है। कलयुग को तो नई नहीं कहेंगे, तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये तो सृष्टि चली आती है। अब सबसे ज्यादा दुख का सबसे ज्यादा तमोप्रधानता का समय कौन सा हुआ चारों युगों में, वो तो कलयुग का अंत हुआ। और उसके पश्चात क्या होता है, सतयुग की आद होती है जो सतोप्रधान समय है। तो ये जो परिवर्तन है चक्र में, जैसे रात के बाद दिन आता है, ये तो कलयुग के अंत और सतयुग की आद के समय ही सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। अवश्य ही वो समय होगा जब परमात्मा अवतरित हुए होंगे। अब शास्त्रकार ने अपने समय के अनुसार लिख दिया कि द्वापर का अंत ही अति धर्म ग्लानि का समय होगा और उस समय भगवान आएंगे। और फिर क्या किया, आप सोचिए कि परमात्मा आएंगे तो द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, तो और भी नीचे का युग है गिरती कला का, तो परमात्मा अवतरित होकर क्या कलयुग स्थापित करेंगे। वास्तव में लेखक ने ये लिख दिया है संभवामी युगे युगे। तो युगे युगे का अर्थ उन्होंने ये ले लिया है कि हर युग के अंत में परमात्मा आते हैं। वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि मैं कलयुग की अंत और सतयुग की आद के संधि काल उसमें आता हूं, क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में हम सतयुग के साथ युग शब्द प्रयोग करते हैं और कलयुग के साथ युग शब्द प्रयोग करते हैं, बाकी युगों के साथ हम युग शब्द प्रयोग नहीं करते। आप देखेंगे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो फर्स्ट और लास्ट के साथ हम युग यूज करते हैं। उस कारण से उसने लिख दिया कि युगे युगे, पर इसका इंटरप्रिटेशन ये ले लिया गया कि हर युग के अंत में भगवान आते हैं। अब आप सोचिए सतयुग तो वैसे ही सतों पर धानता का युग है, अगर मान भी लिया जाए कि परमात्मा सतयुग के अंत में आए तो फिर सतयुग स्थापित हो जाएगा, उसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, त्रेता तो आएगा ही नहीं। अच्छा मान लीजिए कि त्रेता के अंत में आए तो फिर त्रेता स्थापित हो जाएगा, बल्कि सतयुग स्थापित हो जाएगा, फिर द्वापर नहीं आएगा। इसलिए अगर अच्छी तरह से सोचा जाए कि गीता के भगवान के अवतरण का समय कौन सा हो सकता है और है, तो सिवाय कलयुग अंत और सतयुग आदि के संधि काल के हो ही नहीं सकता।
जो हमने एक गीता का वर्णन पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, उसमें एक वर्णन एक दृष्टांत बड़ा रहता है कि कौरव पांडवों की सेना है, पांडव है, उस सेनापति है, युद्ध हुआ और उस युद्ध के में गीता संदेश सुनाया गया, वो पूरा एक हिंसक वातावरण था। तो क्या गीता में वर्णित युद्ध हिंसक था?
ये भी बात है, जैसे हमने आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में देखा कि समय तो कलयुग का अंत है जब भगवान आते हैं, तो आज हम ये कहें कि गीता ज्ञान की पुनरावृत्ति का समय है और कोई व्यक्ति समझ भी जाए तो सोचेगा कि वो कौरव कहाँ है, वो पांडव कहाँ है, कुरुक्षेत्र तो है परंतु वो इतने भगवान का रथ कहाँ है, वो सारी दृश्य को सामने लाएगा। तो वास्तव में ये भी जो लेखक है, जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने स्मृतियों श्रुतियों के आधार पर ये शास्त्र लिखा है। तो इसमें जैसे हमने कहा इसका समय परिवर्तित है, इसी प्रकार से जो युद्ध भगवान ने करवाया था उसका रूप भी परिवर्तित है। अगर आज भी कोई गीता पढ़े और उसमें देखे कि परमात्मा क्या कह रहे हैं और उसको कंपेयर करे कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, तो आपको सब बात स्पष्ट हो जाएगी। आप सोच सकते हैं क्या, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है कि युद्ध का मैदान है, सभी सेनाएं खड़ी हैं और गीता के भगवान एक घोड़े गाड़ी के रथ में सवार होकर अर्जुन को, जो भी उसी रथ में बैठा है, उसको आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। और आप उस आध्यात्मिक उपदेश को पढ़ें तो उसमें आत्मा का जिक्र है, परमात्मा का वर्णन है, कर्मों की गति का वर्णन है, ज्ञान भक्ति वैराग का वर्णन है, योग का वर्णन है, इत्यादि इत्यादि। क्या ये उपदेश युद्ध कराने के से संबंधित है? नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक उपदेश है। आज भी पुस्तक जो है कविता के रूप में 18 अध्याय में लिखी हुई है। अच्छा, क्या परमात्मा ने सचमुच कविता के रूप में ये ज्ञान सुनाया? दूसरी बात, क्या एक ऐसा संभव है कि वो ज्ञान सुना रहे हैं और सारी सेनाएं रुकी हुई हैं, इस बात की इंतजार कर रही हैं कि जब ये ज्ञान पूरा होगा हमारा युद्ध शुरू हो जाएगा। क्या उस समय जो योद्धा बैठे थे, जो इतने सारे घोड़े इत्यादि थे, उनको खाने की आवश्यकता नहीं हुई होगी, सोने की आवश्यकता नहीं होगी? एक तो ये बात है, ये तो इसका व्यवहारिक रूप है। वैसे भी अगर हम देखें तो क्या परमात्मा हिंसा करवा के अहिंसक सतयुग या दैवी युग की स्थापना करते हैं? गीता में ही जो चिन्ह और लक्षण बताए गए हैं आसुरी संपदा के, उसमें फर्स्ट नंबर है हिंसा, और दैवी संपदा के उसमें पहला नंबर आता है अहिंसा का। तो अहिंसा की संपदा को स्थापित करने के लिए क्या परमात्मा ने हिंसा करवाई होगी? नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा के द्वारा अहिंसा की स्थापना नहीं हो सकती। तो अवश्य ही वह युद्ध किसी और प्रकार का था, और उसका वर्णन भी भगवद गीता उसी ग्रंथ में है। अगर आप उसको पढ़ें तो पहले आत्मा का परिचय दिया गया है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा शाश्वत है, आत्मा में ही गुण अवगुण होते हैं। और आगे जाके ये बताया गया है कि तुम्हारे शत्रु कौन है। आत्मा के शत्रु बाहर नहीं है, स्पष्ट रूप में कहा गया आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, और आत्मा के शत्रु उसके भीतर है जिनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में भगवान ने कहा है। और यहां तक कहा है कि अर्जुन ये काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा ये है, इसको मार अर्थात इसको जीत। और काम की इच्छा जब पूरी नहीं होती तो मनुष्य में क्रोध पैदा हो जाता है, और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे सर्वनाश हो जाता है। और सारे गीता में अर्जुन को नष्टो मोहा, कि तुम ये मोह जो है अपने देह का और देह की वस्तुओं का ये छोड़ो, ये तो विनाशी है। अंत में जाके लास्ट अध्याय में अर्जुन कहता है, हे भगवान, मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया हूं, कि मोह मेरा नष्ट हो गया, मैं अपने आत्मस्वरूप की स्थिति में हो गया। तो सारी गीता में काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान, इसको त्यागने का, इनसे युद्ध करने का, आध्यात्मिक युद्ध करने का, एक अहिंसक युद्ध करने का उपदेश है। तो इसलिए वैसे भी बुद्धि कहती है क्या परमात्मा हिंसक युद्ध करवाएंगे? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल तो ठीक है, लेकिन क्या वो हिंसा के माध्यम से होती है? अगर इस पर और भी विचार करें तो गीता के भगवान का प्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट उपदेश जो शुरू में ही चैप्टर 2 में है, उसमें यह है कि तुम आत्मा हो, हे अर्जुन तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, ये ज्ञान है। अगर परमात्मा अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं और युद्ध करवाएं परमात्मा या प्रेरित करें कि मनुष्य युद्ध में क्या होता है कि शरीरों का नाश हो जाता है, अगर शरीरों का नाश हो भी जाता है तो आत्मा तो अमर है, गीता का भगवान खुद कह रहा है। अगर एक पापी के शरीर का वध भी कर दे तो उसमें से पाप आत्मा ही निकलेगी और वो फिर पाप आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लेगी। तो क्या भगवान जो खुद जानते और बता रहे हैं कि शरीर के नाश से आत्मा के जो गुण या अवगुण है उसका नाश नहीं हो सकता, वो तो आत्मा के साथ संस्कार के रूप में जाते हैं, तो परमात्मा ऐसा युद्ध क्यों करवाएंगे? ये तो आज के बहुत सारे स्कॉलर भी मानने लग गए हैं, क्योंकि परंपरागत किसी चीज को जिसमें आस्था हो उसको डिफरेंटली कहा जाए तो आम जनता को अजीब लगता है। हालांकि उसमें स्पष्ट तौर पर ये बात प्रत्यक्ष होती कि भगवान हिंसा नहीं करवाते, फिर भी आज के स्कॉलर भी रिसर्च करके ये मानने लग गए हैं कि इस बात की बहुत संभावना है कि ये युद्ध हिंसक नहीं था, और ये आध्यात्मिक युद्ध था, विक्ट्री ओवर वाइसेस।
इस स्पष्टीकरण से एक प्रश्न और मन में उठता है कि परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप में गीता नहीं सुनाई थी।
वास्तव में श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण देवता थे। श्री कृष्ण वास्तव में इस विश्व में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या देव आत्माएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा कलाओं वाले सबसे संपन्न श्री कृष्ण थे। उनको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, और वो सारे विश्व के प्रथम जो राजगद्दी थी उसके महाराज कुमार थे, अर्थात वो पावन थे। उससे ज्यादा पावन कोई भी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं थी। और श्री कृष्ण को यह भी दिखाया जाता है कि जब प्रलय होती है उनकी कथा के अनुसार, तो उसके बाद एक पत्ते पर श्री कृष्ण तैरते हुए आते हैं, अर्थात वो नए विश्व के वृक्ष का, क्योंकि गीता में भगवान ने सृष्टि को एक वृक्ष से भी तुलना की है कि ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है जिसका बीज मैं ऊपर हूं, तो उसके प्रथम पत्ते हैं। और 16 कला संपूर्ण है, देवता है, पावन दुनिया के प्रथम राजकुमार हैं। और ये शायद भगत लोग इस यहां भी कंफ्यूज करते हैं कि श्री कृष्ण ही अपनी कॉरोनेशन और राजगद्दी पर बैठने के बाद श्री नारायण कहलवाते हैं। आप देखेंगे श्री नारायण के बचपन के आपको चित्र या इतिहास नहीं मिलेगा, क्योंकि गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और वैसे भी उनको विष्णु का अवतार कहते हैं, और विष्णु का एक रूप श्री नारायण है, दूसरा श्री लक्ष्मी है। तो जो देवता सतयुग के आने वाले देवता हैं, पहली बात तो गीता के भगवान को गीता सुनानी पड़ती है कलयुग के अंत में, वहीं अधर्म होता है, वहीं पाप होता है। उस समय देवताओं की तो कहते हैं कलयुग में परछाई भी नहीं पड़ती, क्योंकि देवताओं की बिल्कुल सात्विक सतो प्रधान। आज दिल्ली शहर में अगर कोई देवता आ जाए, और जितना उसका पोल्यूशन लेवल है जिससे कि मनुष्य भी का दम घुट रहा है, तो देवता वहां आ ही नहीं सकते। और दूसरी बात, पावन है, पतित पावन नहीं है। परमात्मा गीता का भगवान पतित पावन है, अर्थात गीता के भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उससे पावन श्री कृष्ण जी बने, ना कि श्री कृष्ण पावन ने ज्ञान सुनाया। तो हुआ यह है कि परमात्मा ने जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उसको ग्रहण करने वाले थे, वो जाके सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। और उन्होंने गीता के द्वारा ज्ञान सुन के देवता बनने वाले का नाम गीता के भगवान के रूप में रख दिया। तो डिस्टिंक्शन ये है, असुर आसुरी कलयुगी लोग पतित हैं, सतयुगी देवता पावन है, और परमात्मा पतित पावन है। तो अगर हम पतित और पावन के कंफ्यूजन को दूर करें कि आखिर पतितों को पावन किसने बनाया, श्री कृष्ण तो पावन है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि गीता के भगवान अलग हैं, अब वो निराकार है। इसका एक दूसरा भी पहलू है, वो ये है कि गीता के भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप से मुझे याद करो, और अपना रूप मैं स्वयं ही बताता हूं, अपने साथ योग लगाने का ज्ञान मैं स्वयं ही देता हूं। अब ये तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा भी शाश्वत है, तो परमात्मा तो है ही शाश्वत। अब परमात्मा का शाश्वत वो रूप कौन सा है जिसको याद करो? भगवान ने कहा मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। किसमें लगाओ? श्री कृष्ण जी को जिस रूप में हम देखते हैं वो तो उनका शारीरिक रूप है ना। अब किसी के शारीरिक रूप में ध्यान लगाना, देवता ही क्यों ना हो, क्या वो परमात्मा में ध्यान लगाना हो सकता? नहीं, तो क्योंकि वो शारीरिक रूप तो धारण किया और चला गया। वो शाश्वत रूप कौन सा है? तो प्रश्न ये है कि गीता का निराकार भगवान कौन है? तो गीता का निराकार भगवान तो श्री कृष्ण नहीं हो सकते, श्री कृष्ण तो साकार हैं। अगर उनकी आत्माओं को गिने वो तो सतयुग में जन्म लेती है, इसलिए गीता के निराकार भगवान श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि निराकार रूप वाले हैं जिनका नाम शिव है।
इसी प्रश्न को मैं आपसे आगे पूछना चाह रही हूँ भाई जी। गीता के निराकार भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है?
अब आप देखिए कि गीता के भगवान है ही निराकार। जब हम कहते हैं गीता के भगवान ने अवतार लिया तो अवश्य ही कहीं से आए और साकार रूप में आए। क्यों अवतार लिया? क्योंकि जिन मनुष्य आत्माओं का उन्होंने उद्धार करना है, उनको पति से पावन बनाना है, वो साकार रूपधारी हैं। तो साकार रूपधारी को ज्ञान सुनाना है, ज्ञान परमात्मा के पास है, सत्य ज्ञान, लोक का, परलोक का, मुक्ति का, बंधन का सारा ज्ञान जो गीता में वर्णित किया गया है। परफेक्टली नासिक उसका हिंट तो है, आत्मा है, कर्मों की गति है आदि, तो वो ज्ञान सुनाना है। तो परमात्मा को साकार रूप लेना पड़ा। लेकिन साकार रूप लेने से पहले और उसके पश्चात, और जो वो कह रहे हैं मुझे याद करो परमात्म स्वरूप, वो तो निराकार है। अब इसमें एक बात और आती है कि यदि परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप से साकार रूप धारण किया तो किस रूप से धारण किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रूप तो धारण किया, और वो जो रूप धारण किया वो परमात्मा ने जन्म लेकर नहीं किया। शब्द अवतार है, अवतरित होते हैं परमात्मा मनुष्यों में, देवताओं में, और उसकी भेंट में परमात्मा ने जो जन्म लेते हैं उसमें यही अंतर है कि देवताएं भी देवी दुनिया में सात्विक तरीके से देवता के रूप में शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, छोटा बच्चा बनते हैं, फिर बड़ा होते हैं, शरीर का त्याग भी करते हैं, और कलयुगी मनुष्य भी करते हैं। परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं और उनको आना भी है, इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने अवतार लिया। अब किस रूप में लिया, उसके लिए हमारे देश में एक कथा प्रचलित है कि परमात्मा शिव हैं और उनकी जटाओं से ज्ञान की गंगा निकली, जिसके भागीरथ ने धारण किया। भागीरथ उसको भारत की ओर लाए और शंख बजाते हुए लाए। तो परमात्मा का जो अवतरण होता है, पहली बात यह है कि वो शरीर रूपी रथ में होता है, क्योंकि परमात्मा को शरीर चाहिए बोलने के लिए, तो जन्म नहीं होता। अर्थात परमात्मा अवतार लेते हैं, और ये गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूं माता के पेट से, मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूं। अर्थात मैं किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शरीरधारी आत्मा के तन या शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता हूं। और आगे ये भी कहा हुआ है कि इस साधारण तन में आए हुए मुझ परमात्मा को मूढ़मति मनुष्य पहचानते नहीं। आप देखिए कि गीता का भगवान है, अब गीता के भगवान कि कितने लोगों ने उनको पहचाना, थोड़े से पांडवों ने, बाकी सारे विद्वान इत्यादि वो थे। इसलिए गीता के भगवान निराकार हैं, बाकी उनको स्पष्ट करने के लिए तो समय चाहिए। बेहतर है कि जो भी इसको सुन रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो हमारे किसी सेवा केंद्र पे जाके इसको सुने, अथवा हम किसी दूसरे एपिसोड में इस बारे में चर्चा कर सकते।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, ओम शांति। आज हमें भाई जी ने जो भी स्पष्टीकरण बताए हैं, उन आध्यात्मिक रहस्यों के आधार पर हम ये जान सके हैं कि गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव हैं। इस संबंध में और भी जानकारी लेने के लिए मैं सभी दर्शकों से कहूंगी कि वे अपने समीपस्थ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं।